अध्याय 12 वर्ड की सार्थकता सिग्निफिकेंस ऑफ वर्णा। आर्थिक जीवन में वर्ण की सार्थक भूमिका। वर्ण शब्द विन्य वर्ण करना चुनना इस धातु से बना है। प्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक तौर पर जो चार प्रकार की प्रवृत्तियां हैं उनमें से अपने स्वभाव को देखकर वह किसी एक को चुन लेता है। वर्ण विभाग चार पेशे या चार व्यवसाय नहीं है, ये चार प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं के पहलू को आर्थिक पहलू को ही नहीं संपूर्ण मनुष्य को देखा गया है। वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत समाज को ध्येय को सम्मुख रखते हुए उनके अभिष्ट विकास का सिद्धांत है। खाना पीना कपड़ा ही सब कुछ नहीं, मनुष्य इससे बहुत कुछ ऊंचा है। शरीर ही सब कुछ नहीं, वह शरीर का अधिष्ठाता उसका स्वामी है। श्रम तथा पूंजी शरीर की रक्षा के लिए है, परंतु फिर शरीर तो अपने लिए नहीं, शरीर आत्मा के लिए है। व्यक्ति रूप से प्रत्येक मनुष्य को आत्मा की तरफ जाना है। वर्ण व्यवस्था मनुष्य को सामूहिक रूप से शरीर से आत्मा की तरफ ले जाने का सिद्धांत है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वृत्तियां नहीं, मानव की चार प्रवृत्तियां हैं। आत्मा के जीवन यात्रा में जाने की चार दिशाएं हैं, इनमें एक प्रवृत्ति एक दिशा खाना पीना कपड़ा भी है, परंतु यही तो सब कुछ नहीं। हमारा सब कुछ, हमारा ध्येय तो आत्मा का विकास है। खाना पीना कपड़ा वैश्य प्रवृत्ति है, आत्मा का विकास इससे बहुत कुछ बढ़कर है। भारत की संस्कृति के दृष्टिकोण में प्रत्येक मानव को जीवन यात्रा में आत्मा का विकास करना है। जो काम प्रत्येक को करना है वही तो अंत में जाकर मानव समाज को करना है, क्योंकि मानव के सामूहिक विकास का नाम ही सामाजिक विकास है। मनुष्य में चार प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं चार के आधार पर मनुष्य समाज में भारतीय संस्कृति में चार प्रवृत्तियां मानी है। प्रवृत्तियों का चार विभाग संसार के मौलिक तथ्यों पर किया गया है। सांख्य शास्त्र के अनुसार सत्ता मात्र के आधार में सत्व रज तम ये तीन मौलिक तत्व हैं। इसी को सत्व रज अस्तम ममा साम्यावस्था प्रकृति, सत्व रज तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, इनकी विषमावस्था का नाम विकृति अर्थात यह संसार, ऐसा कहा है। सृष्टि की रचना के यही सूक्ष्म तत्व मन की रचना करते हैं, जिनसे मन सात्विक राजसिक तथा तामसिक कहलाता है। मनोविज्ञान के ये तीन तत्व समाज शास्त्र में जाकर चार बन जाते हैं। आर्य संस्कृति के समाज शास्त्रियों ने सांख्य के मनोविज्ञान के तीन तत्वों के सिद्धांत को लेकर समाज का विभाग सात्विक सात्विक राजसिक राजसिक तामसिक तथा तामसिक इस प्रकार चार प्रवृत्तियों को आधार बनाते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इन चार वर्णों के रूप में कर दिया गया। ये चारों पेशे नहीं, व्यवसाय नहीं, अपितु मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के चार मुख्य विभाग हैं। संसार भर के पेशे व्यवसाय इन विभागों में से वैश्य विभाग के अंतर्गत समा जाते हैं। भारतीय अध्यात्म तत्व से ही भारतीय मनोविज्ञान ने अपने सिद्धांतों को स्थिर किया। इसी मनोविज्ञान को आधार बनाकर भारत की संस्कृति के समाज शास्त्र ने मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को सामने रखकर समाज के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार विभाग किए। मानव समाज की प्रवृत्तियों का उसकी स्वाभाविक दिशाओं का यह वर्गीकरण है। सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जिसकी जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि है ब्राह्मण है। सत्वगुण तथा रजोगुण का सम्मिश्रण छात्र प्रवृत्ति है, इसमें सत्वगुण के साथ रजोगुण की प्रधानता है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग समाज सेवा का जो कार्य करते हैं वह इसलिए नहीं करते क्योंकि यह उनका पेशा है, आजीविका का साधन है। वे इन कार्यों को इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जीवन का आधारभूत तत्व आत्मा का विकास है और वही उन्हें अपने मस्तिष्क तथा पौरुष से समाज सेवा के कार्य में प्रेरित करता है। उनकी आत्मा स्वार्थ से प्रार्थ के मार्ग पर जा रही है, विषमता से समता के मार्ग पर जा रही है, अनेकता से एकता के मार्ग पर जा रही है, प्रकृति में भटकने के स्थान पर अपने स्वरूप में जा रही है, अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। उनकी सेवा निष्काम होती है, समाज उनकी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। ब्राह्मण प्रवृत्ति वाले के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि वह समाज सेवा करता हुआ भूखा मरने लगे तो सिल तथा उच्च से निर्वाह कर ले, परंतु मांगे नहीं। सिलो अच्छमप्यादित विप्र अजी वन्यत अस्तत, बहुत दिनों के लिए भोजन सामग्री इकट्ठी करके भी ना रखे, स्वाधीन रहता हुआ निष्काम वृत्ति से समाज की सेवा करे, गरीबी में ही अमीरी समझे। क्षत्रिय प्रवृत्ति वाले के लिए भी धन की लालसा उसका क्षेत्र नहीं है, उसकी राजसिक प्रवृत्तियाँ सत्य गुण की तरफ खींची जा रही है। रजोगुण के कारण उनमें क्रियाशीलता की प्रधानता है, परंतु उसकी संपूर्ण क्रियाशीलता का रुख सत्व गुणी है। रजोगुण की अपेक्षा तमोगुण प्रधान है। जैसे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रवृत्ति में निष्कामता है, वैसे वयस्क प्रवृत्ति में सकामता प्रवृत्ति को शूद्र प्रवृत्ति कहा गया है। जीव दो प्रकार के होते हैं, उद्बुद्ध तथा अनुबुद्ध। उद्बुद्ध जीव तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञान प्रधान, क्रिया प्रधान, इच्छा प्रधान। जो मस्तिष्क से समाज की सेवा करते हैं वे निष्काम प्रवृत्ति वाले सात्विक जीव ज्ञान प्रधान होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। जो हाथ से समाज की सेवा करते हैं वे निष्काम राजस जीव क्रिया प्रधान होने के कारण क्षत्रिय कहलाते हैं। जो उदर से खाने पीने के दृष्टिकोण को मुख्यतः देखकर समाज की सेवा करते हैं वे सकाम तम प्रधान राजस जीव इच्छा के प्रबल होने के कारण वैसे कहलाते हैं। यह तो उद्बुद्ध जीव की बात हुई, परंतु जो अनुबुद्ध अवस्था के जीव होते हैं वे सकामता, जड़ता तथा तमोगुण की प्रधानता होने के कारण शूद्र कहलाते हैं। मनुष्य में ज्ञान, क्रिया तथा इच्छा की प्रधानता के कारण उसका ज्ञान प्रधान, क्रिया प्रधान तथा इच्छा प्रधान यह सत्व रज अस्तम मास सात्कम विभाग करके वर्ण व्यवस्था की आधारशिला रखी गई है। श्रम विभाग वयस्क प्रवृत्ति का अंग है। नंबर एक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार विभाग पेशों के वृत्तियों के नहीं प्रवृत्तियों के हैं। इन चार प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति वह है जिसे वयस्क प्रवृत्ति कहा जाता है। मनुष्य की वयस्क प्रवृत्ति ही श्रम विभाग के रूप में प्रकट होती है। इस प्रवृत्ति का व्यक्ति सब कुछ औपचारिक दृष्टि से देखता है और जीवन के आर्थिक प्रश्नों को हल करने में ही लगा रहता है। वयस्क के जीवन को ही पेशे या व्यवसाय का जीवन कहा जा सकता है, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को नहीं। इसलिए वयस्क प्रवृत्ति तथा श्रम विभाग का सिद्धांत एक ही वस्तु है। वयस्क प्रवृत्ति वर्ण व्यवस्था का चौथाई हिस्सा है। वयस्क प्रवृत्ति के अलावा भारत की संस्कृति में सामाजिक विकास की तीन और प्रवृत्तियां मानी गई हैं, इसलिए श्रम विभाग का सिद्धांत वर्ण व्यवस्था के केवल चौथाई हिस्से को छूता है। नंबर दो, वर्ण व्यवस्था ही श्रम विभाग नहीं है। वर्ण अर्थात प्रवृत्तियां चार हैं, श्रम अर्थात प्रवृत्तियां अनंत हैं। भारतीय संस्कृति में अनंत श्रमों का नाम वयस्क प्रवृत्ति है। ब्राह्मण प्रवृत्ति और क्षत्रिय प्रवृत्ति की तरफ अभी तो मनुष्य समाज ने कदम भी नहीं रखा। भारतीय संस्कृति में केवल चार पेशे नहीं थे, आजकल की तरह हजारों पेशे थे, परंतु उन सबको एक वयस्क प्रवृत्ति के नाम से पुकारा जाता था। वर्ण का अर्थ पेशा या व्यवसाय नहीं है, इसका अर्थ है भिन्न वर्णे, वर्ण करना, चुनना। चुनने का अभिप्राय पेशे के चुनने से नहीं, पेशा तो जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को सामने रखकर चुना जाता है। चुनने का अभिप्राय प्रवृत्ति अथवा स्वभाव के अनुकूल अपने जीवन पथ को चुनने से है, वह पथ जो आत्मा के विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। नंबर तीन, वर्ण का अर्थ वृत्ति नहीं प्रवृत्ति था। ये प्रवृत्तियां चार समझी जाती थी, जिनमें से आर्थिक प्रवृत्ति एक थी। वे पढ़ने अथवा सेना में भर्ती होने का उद्देश्य भी यदि रुपया कमाना होगा तो वह वैश्य प्रवृत्ति में ही गिना जाएगा, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रवृत्ति में ही नहीं। जो लोग पैसा कमाने के लिए पढ़ाते लिखाते हैं, पैसे के लिए सेना में भर्ती होकर दूसरे मुल्कों में जाकर बेगुनाहों का गोली का शिकार बनाते हैं, भले ही वे अपनी जान खतरे में डालते हों, वे न ब्राह्मण है न क्षत्रिय। भारतीय संस्कृति की परिभाषा में पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने वाला वैश्य है, प्रवृत्ति ही मुख्य वस्तु है, क्योंकि नहीं यही आंतरिक है, वास्तविक है, यही आत्मा से फूटती है। वृत्ति तो चार में से एक प्रवृत्ति का बाह्य रूप है। समाज का विकास जड़ सिद्धांतों पर चलता हुआ समाज श्रम विभाग के आर्थिक नियम को पैदा कर देता है। श्रम विभाग से पूंजी का आसमान विभाग हो जाता है। पूंजी के आसमान विभाग से बना बनाया समाज टूट जाता है। श्रेणी युद्ध, क्रांति तथा विप्लव की आधी से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वही सामाजिक विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता हुआ वर्ण व्यवस्था के गहरे तथा विस्तृत नियमों पर समाज की रचना करता है। इसका परिणाम शांति, सहयोग तथा पारस्परिक प्रेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जीवन का आर्थिक पहलू एक बहुत छोटा पहलू है। सारे लड़ाई झगड़े, सब संग्राम, सब क्रांतियां, सब विप्लव आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए ही होते हैं। नंबर चार, भारतीय संस्कृति ने वर्ण व्यवस्था की रचना करते हुए मनुष्य के सामने एक ऊंचा लक्ष्य रख दिया था। वयस्क प्रवृत्ति को आर्थिक समस्या में उलझता छोड़कर यह घोषित किया गया था कि तमोगुण से रजोगुण ऊंचा है, रजोगुण से सत्वगुण ऊंचा है, सात्विक भाव को जागृत करना, आत्मा को जानना है, पहचानना है और यही मनुष्य की जीवन यात्रा की अंतिम लक्ष्य है। श्रम विभाग आर्थिक समस्या को मनुष्य की मुख्य समस्या मानता है, वयस्क प्रवृत्ति को ही सब कुछ मानता है, वर्ण व्यवस्था ऐसा नहीं मानती। यह श्रम विभाग तथा वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों में मूलगत भेद है। यदि समाज के विकास को अपने हाथ में ना लेकर स्वयं होने दिया जाए तो थोड़े ही काल के अनंतर श्रम विभाग का सिद्धांत अपने आप कार्यकर्ता दिखाई देगा। वर्ण व्यवस्था तो उस सिद्धांत को अपने हाथ में लेकर उसके उद्देश्यों को निर्धारित कर उनकी तरफ समाज को ले जाने का नाम है। अपने आप इसलिए क्योंकि अर्थ, पूंजी, खाना पीना, कपड़ा, इन पर रुक जाना, इनके आगे ना बढ़ना है, यह मनुष्य का कुछ स्वभाव सा है। आगे तो तब बढ़े जब भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को साधन समझे, साध्य नहीं। वर्ण व्यवस्था में तो आत्मा का विकास प्रधान है, भौतिक भोग सामग्री उस विकास का एक साधक अंग है, वही सब कुछ नहीं। वर्ण व्यवस्था में श्रम विभाग आ जाता है, श्रम विभाग में वर्ण व्यवस्था नहीं आती। वर्ण व्यवस्था बड़ी वस्तु है, श्रम विभाग छोटी। श्रम विभाग का आधार मनुष्य की शारीरिक अर्थात आर्थिक आवश्यकताएं हैं। वर्ण व्यवस्था का आधार शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक आवश्यकताएं हैं। श्रम विभाग की दृष्टि पैसों तथा व्यवसायों पर पड़ती है। वर्ण व्यवस्था की दृष्टि उस सिद्धांतों पर जिनसे पैसे तथा मानव के विकास की दिशा निश्चित की जाती है। नंबर 5, वर्ण विभाग वित्तियों का पैसों का नाम होकर प्रवृत्तियों का विभाग है। अच्छी आमदनी ना होने या अन्य किसी कारण से मनुष्य पैसा बदल सकता है, परंतु प्रवृत्ति नहीं बदलती। पैसा तो बदले वाली वस्तु है, वर्ण अर्थात प्रवृत्ति सत्य वस्तु है। तभी कहा है, आचार्यस्त्वस्य याम जाति यथावद विधि पारगह उत्पादयाति सवित्राया सा सत्या सा आजरा आमरा। आचार्य अपने शिष्य के मानसिक विकास को वर्षों तक देखकर, उसकी प्रवृत्ति को देखकर जो जाति जो वर्ण निश्चित कर देता है वह सत्य है, अजर है, अमर है। क्योंकि वर्ण विभाग तो प्रवृत्ति का विभाग है, वर्गीकरण है। बचपन से लगातार वर्षों तक समीप से देखकर यह बात बता देना है कि अमुक व्यक्ति के जीवन की दशा इस तरफ जा सकती है, दूसरी तरफ नहीं। नंबर 5, वर्ण व्यवस्था में वैश्य वर्ण श्रम विभाग का प्रतिनिधि था। नंबर 6, वर्ण व्यवस्था में वैश्य वर्ण श्रम विभाग का प्रतिनिधि था। जैसे श्रम विभाग में मनुष्य अर्थ के उपार्जन के लिए कई व्यवसाय करता है, वैसे अर्थ उपार्जन के लिए जो जो भी व्यवसाय किए जाते थे वे वैश्य वर्ण में गिने जाते थे। वर्ण व्यवस्था शब्द का दोनों अर्थों में प्रयोग होता था। मुख्यतः प्रवृत्तियों के विभाग को वर्ण व्यवस्था कहा जाता था, परंतु वैश्य वर्ण में जो व्यवसायों का विभाग था उसे भी वर्ण कह दिया जाता था। जब वर्ण शब्द का प्रवृत्तियों के विभाग के अर्थ में प्रयोग होता था तब वर्ण सत्य था, अजर था, अमर था। जब वर्ण शब्द का पैसे और व्यवसायों के अर्थ में प्रयोग होता था जैसा वह सदियों से होता रहा तब वर्ण बदल सकता था, जब चाहे जो जिस वर्ण में जा सकता था उसी अर्थ में कहा जाता था। शूद्रो ब्राह्मणा ब्राह्मण तमेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियो या जात मेवम तु विद्या द्वयस्यैव च। शूद्र ब्राह्मण हो सकता है क्योंकि प्राचीन साहित्य में व्यवसाय और स्वभाव, वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए वर्ण बदल सकता है नहीं बदल सकता, ये दोनों भाव उसमें पाए जाते हैं। परंतु जब कहा जाता है वर्ण नहीं बदल सकता तब प्रवृत्ति से अभिप्राय होता है, पैसे से नहीं। जब कहा जाता है वर्ण बदल सकता है तब वृत्ति से, पैसे से अभिप्राय होता है, प्रवृत्ति से नहीं। असल में वर्ण बदलता भी है, नहीं भी बदलता है, क्योंकि एक पैसे को छेड़कर दूसरे पैसे को लेने से कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। उम्र भर के लिए किसी के लिए एक ही पैसा नहीं लिखा जा सकता। वर्तमान समय में दूसरी प्रवृत्तियों का तो कोई नाम ही नहीं लेता, एक ही प्रवृत्ति ने मानव को घेर रखा है, सब वैश्य बने जा रहे हैं, पैसा पूंजी कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिया जो प्रवृत्तियाँ थी वे भी प्रवृत्तियाँ पैसा कमाने का साधन बन गई हैं। ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व बिल्कुल उठ गया है, निष्कामता कहीं रही नहीं। समाज के ऊंचे अध्यात्मवादी आदतों की कोई चर्चा नहीं करता। इसका कारण यह है कि हमने समाज का विकास अंधा जड़ शक्तियों के हाथ में दे रखा है, उसे चेतन शक्ति के हाथ में नहीं दिया। जड़ विकास का परिणाम है कि आज हम भौतिक पदार्थ को, संसार के भोग ऐश्वर्य को सब कुछ समझ बैठे हैं। इनके लिए जीते, इनके लिए मरते हैं, पैसे से भौतिक पदार्थ जुटते हैं, इसलिए पैसा सब कुछ बन गया है। भारतीय संस्कृति इस बात को नहीं मानती कि खाना पीना ही सब कुछ है, रोटी की समस्या ही मनुष्य की आदि और अंत की समस्या है। परंतु न मानने मात्र से तो काम नहीं चलता, पैसे से मनुष्य का मुँह कैसे छूटे, इससे इसका मुँह कैसे मुड़े। भारतीय संस्कृति ने इसका उपाय वर्ण व्यवस्था द्वारा किया था। नंबर 7, पैसे की क्रय शक्ति बढ़ गई है। कोई समय था जब संसार में पैसे की कोई जानता तक न था। किसान खेती करता था, जुलाहा कपड़ा बुनता था, तीसरा काम करता था। सिक्के जिसके पास जो कुछ था उसके पास नहीं था, वह बदले में दूसरे से लेता था। इस प्रकार वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय होता था। परंतु मनुष्य विनिमय का कोई सुविधाजनक छोटा संक्षिप्त माध्यम चाहता था। सो मन अनाज या रुई को संभाल रखना कोई आसान काम ना था, उसे देर तक रखा भी नहीं जा सकता था। उसमें कीड़ा लग सकता था, आग पानी से वह नष्ट हो सकती थी, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया नहीं जा सकता था। विनिमय के इस माध्यम की तलाश करते करते पैसे की उत्पत्ति हुई। पैसे को जब चाहे जिस चीज में बदला जा सकने लगा। मनुष्य को बहुत सुविधा हो गई, मनुष्य पैसे को संभाल कर रख लेता है, जब चाहता जिस किसी चीज को पैसे में बदल देता है, और जब चाहता उसका अनाज कपड़ा लकड़ी और मकान जो चाहता खरीद लेता है। धीरे धीरे पैसे की शक्ति बढ़ने लगी। यह शक्ति इतनी बढ़ गई कि पैसे से मनुष्य खाने पीने पहनने के पदार्थ ही नहीं सब कुछ खरीद सकने लगा। जब ब्राह्मण ने यह देखा कि पैसे में इतनी शक्ति है, उसे किसी भी चीज में बदल जा सकता है, उसमें संसार की सब शक्तियाँ समेट कर रख दी गई हैं, जब चाहे उसमें से जिस किसी शक्ति को उद्भूत किया जा सकता है, तो उसने पैसे के लिए अपने मस्तिष्क को बेचना शुरू कर दिया। ब्राह्मण व्यापारी के हाथ पे किया, सबसे ऊंची बोली देने वाले के हाथ उसने अपने दिमाग को नीलाम कर दिया। नंबर 7, छात्र शक्ति भी बनियों के हाथों में खेलने लगी। नंबर 8, छात्र शक्ति भी बनियों के हाथों में खेलने लगी, क्योंकि हर बात में पैसे को जो प्रधानता मिल गई है, वह पैसे वाला आज का युग का राजा है। यह इसलिए क्योंकि पैसे की क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत बहुत बढ़ गई है। भारतीय संस्कृति के समाज शास्त्रियों ने इस खराबी को यही पकड़ लिया था। उन्होंने अपने समाज का विकास आर्थिक आधारों पर नहीं होने दिया, पैसे की क्रय शक्ति को नहीं बढ़ने दिया। नंबर 9, वर्ण व्यवस्था द्वारा पैसे की क्रय शक्ति घटा दी गई थी। वर्ण व्यवस्था द्वारा भारतीय संस्कृति ने यह प्रयत्न किया था कि पैसे वाला खाने पीने भौतिक ऐश्वर्य उपभोग को तो खरीद सके, परंतु हुकूमत और इज्जत को ना खरीद सके। भारतीय संस्कृति का कहना था कि चारों प्रवृत्तियों को लोगों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार समाज की सेवा करें। ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय क्रिया से, वैश्य इच्छा से, शूद्र शारीरिक सेवा से, यह उनका कर्तव्य है। जब किसी का कोई कर्तव्य निश्चित किया जाता है, तो उसके साथ उसे कोई अधिकार भी दिया जाता है। यह अधिकार उसे कर्तव्य के पारितोषिक के रूप में दिया जाना था। संसार में अधिकार 4 प्रकार के हैं, इज्जत, हुकूमत, दौलत, खेलकूद। भारतीय संस्कृति में इन चारों का विभाग कर दिया गया था। ब्राह्मण को इज्जत दी जाती थी, परंतु इज्जत से दिमाग ना बिगड़ जाए, इसलिए इज्जत देते हुए साथ ही कह दिया जाता था, सम्मानाद ब्राह्मणों नित्य मुद्दी जेत पिता दीव। सम्मान से ब्राह्मण ऐसे डरता रहे जैसे विष से। क्षत्रिय को हुकूमत दी गई थी, परंतु हुकूमत से भी दिमाग ना बिगड़ जाए, इसलिए दंड देने की शक्ति को देखते हुए उसे साथ ही कह दिया जाता था, दंडो ही सुमह तेजो दुर्धरा चकितात्म भी धर्मादि चलितम महंति निपमेव सबांधवम। सच्चाई से दिखने वाले क्षत्रिय को दंड शक्ति ही उसके बंधु बांधवों के साथ नष्ट कर डालती है। वैश्य को दौलत मिलती थी, वह दौलत से खाने पीने पहनने रहने के साधनों के सिवा और कुछ नहीं खरीद सकता था। साथ ही जैसे भोजन के पेट में ही पड़े रहने से बीमारी हो जाती है। संपूर्ण संपत्ति के वैश्य के पास जमा होने से समाज का शरीर रुग्ण न हो जाए, इसलिए वैश्य को दौलत संपत्ति देते हुए कहा जाता था। ददाच्च सर्वभूतानां मन्नमेव प्रयत्नतः, वैश्य लेता जाए परंतु साथ ही देता जाए। शूद्र क्योंकि समाज ही अपनी किसी मानसिक शक्ति द्वारा सेवा नहीं कर सकता, इसलिए उसे कहा जाता था। शूद्रेण समस्तावत याव देते न जायते, शूद्रो ब्रह्मा तमेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम। शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, जब तक वह उन्नति नहीं होता तभी तक वह शूद्र है। उसके उन्नति के मार्ग पर चलने में कोई समाज उसके सामने बाधा बनकर नहीं खड़ा हो सकता। इस प्रकार की व्यवस्था में जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी है, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ बंधन भी। वर्ण व्यवस्था में पैसे की क्रय शक्ति को कम करने के लिए इज्जत हुकूमत दौलत को अलग अलग बांट दिया गया था। वैश्य को सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय से नीचे के स्थान पर रख दिया था। भारतीय समाज शास्त्री जानते थे कि स्वार्थ परार्थ के लिए चलेगा तभी समाज का विकास होगा, इसलिए उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण की अवहेलना तो नहीं की थी, परंतु परार्थ को मुख्य बनाकर स्वार्थ को परार्थ के साधक के तौर पर गौण स्थान दे दिया था। नंबर 10, निष्काम प्रवृत्ति परार्थ प्रवृत्ति है, सकाम भाव स्वार्थ प्रवृत्ति है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय निष्काम तथा परार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, और वैश्य तथा शूद्र सकाम तथा स्वार्थ भाव से। भारतीय संस्कृति का ध्येय सकामता नहीं निष्कामता था, स्वार्थ नहीं परार्थ था। इसी लक्ष्य की तरह चलते हुए इस देश की संस्कृति ने सकामता को निष्कामता, स्वार्थ को परार्थ का सेवक बना दिया था। वैश्य प्रवृत्ति को निचला दर्जा देकर ब्राह्मण प्रवृत्ति से उभरने नहीं दिया था। यह भाव वर्ण व्यवस्था का आधारभूत तत्व था, और इसी के द्वारा भारतीय संस्कृति ने पैसे की क्रय शक्ति को कम कर दिया था। नंबर 11, वर्ण विभाग का लक्ष्य प्रवृत्तियों आकांक्षाओं का बंटवारा है। ज्ञान प्रधान व्यक्ति को ज्ञान का जीवन बिताने की सोचनी चाहिए, और इसी आकांक्षा को रखते हुए उसे उचित पुरस्कार मिलना चाहिए। इसी प्रकार क्रिया तथा इच्छा प्रधान व्यक्तियों को करना चाहिए। ब्राह्मण ज्ञान प्रधान है, अतः ज्ञान के कारण उसे इज्जत मिलेगी, हुकूमत और दौलत नहीं। क्षत्रिय क्रिया प्रधान है, अतः क्रियाशीलता के कारण उसे हुकूमत मिलेगी, दौलत और इज्जत नहीं। वैश्य इच्छा प्रधान है, अतः इच्छाशीलता के कारण उसे दौलत मिलेगी, इज्जत और हुकूमत नहीं। संसार के सारे अनर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि इज्जत हुकूमत और दौलत एक ही जगह जमा हो जाते हैं। इन्हें एक जगह जुटने ना दिया जाए, अलग अलग रखा जाए तो समाज में अव्यवस्था नहीं हो सकती, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार समाज सेवा के रूप में कर्तव्य को निभाने का जो अधिकार दिया जाएगा, ब्राह्मण को इज्जत, क्षत्रिय को हुकूमत, वैश्य को दौलत, उसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। वर्ण व्यवस्था की मूलगत विचारधारा को समझने से संसार की ना जाने कितनी अमूल शक्ति को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, उसका समाज के विकास में उपयोग किया जा सकता है। नंबर 12, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार कर्तव्य हैं, इज्जत हुकूमत दौलत खेलकूद, ये चार अधिकार हैं। कर्तव्यों तथा अधिकारों को प्रवृत्ति के अनुसार चार हिस्सों में बांटकर उन्हें नियमित कर देने का नाम वर्ण व्यवस्था है, ऐसा ना होने का नाम वर्ण संकरता है। जब ज्ञान प्रधान सात्विक जीव ज्ञान से समाज की सेवा कर केवल प्रतिष्ठा या इज्जत चाहता है, हुकूमत और दौलत की तरफ नजर नहीं उठाता, तब वर्ण व्यवस्था होती है। जब वह इज्जत, हुकूमत और दौलत तीनों को पाना चाहता है, तब वर्ण संकरता। यही नियम क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र पर लागू है। प्रवृत्तियों का विभाग हो जाने पर उसे क्रियात्मक रूप देना राज्य का काम है। राज्य को यह देखना चाहिए कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रवृत्तियों के व्यक्ति जो समाज की सेवा में निष्काम तथा परार्थ वृत्ति से दिन रात लगे हैं, भूखे तो नहीं मरते, उनकी भौतिक आवश्यकताएं तो पूर्ण होती हैं, उन्हें उचित प्रतिष्ठा तथा सम्मान मिलता है। इस प्रकार व्यक्ति रूप से जब सब लोग अपनी प्रवृत्तियों को नियमित रखेंगे, समष्टि रूप से राज्य उनके नियमन में सहायक होगा, तब वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत क्रियात्मक रूप धारण करेगा। जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य हो, जिस कार्य को कर सकने की उसकी प्रवृत्ति हो, उसके लिए वैसी वृत्ति देना, वैसा आजीविका का साधन उत्पन्न कर देना राज्य का कर्तव्य है, और राज्य से वैसी वृत्ति की आशा रखना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। प्रवृत्तियों तथा वृत्तियों में समता रखने की जिम्मेदारी राज्य पर है। ब्राह्मण की आँख हुकूमत और दौलत पर ना हो, जिससे उसे मान प्रतिष्ठा इज्जत मिल सकती है। क्षत्रिय की आंख दौलत और इज्जत पर ना हो, ऐसे ही काम पर हो जिससे उसके हाथ में शक्ति दी जा सके। वैश्य की आंख इज्जत और हुकूमत पर ना हो, ऐसे ही काम पर हो जिससे वह धन का संचय कर सके। हर व्यक्ति की आकांक्षा उसके दिल की चाह इन तीनों में से एक वस्तु पाने की हो, यह व्यवस्था रखना राज्य का काम है। नंबर 13, श्रम विभाग का विस्तृत अर्थ। कुछ विद्वानों का मत है कि श्रम विभाग का संकुचित अर्थों में न लेकर विस्तृत अर्थों में लेना चाहिए। उनके मत में श्रम में केवल वैश्य नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब आ जाते हैं। उनका कहना है कि चारों वर्णों के चार श्रम का अर्थ आर्थिक श्रम ही नहीं, प्रत्येक प्रकार का कार्य श्रम है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के निस्वार्थ निष्काम जीवन के श्रम है, वैश्य शूद्र के स्वार्थ सकाम भाव के श्रम है। अगर श्रम शब्द इतना विस्तृत अर्थ लिया जाए तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वर्ण व्यवस्था का तो यही उद्देश्य है कि त्याग भाव को जीवन में मुख्य स्थान मिलना चाहिए, स्वार्थ भाव को, प्रवृत्तियों को, भोग को गौड़। यदि यह भाव श्रम विभाग प्रयोग करते हुए भी रह सकता है तो भले ही वर्ण व्यवस्था में इतना औचित्य की श्रम विभाग वह सिद्धांत है जो बिना जाने बुझे स्वयं समाज के अंधे विकास में अपने आप काम कर रहा होता है, जिसका समाज शास्त्री अध्ययन करते हैं। और वर्ण व्यवस्था वह सिद्धांत है जिसके अनुसार समझ बुझकर समाज को अपने हाथ में लेकर समाज में विकसित कर रहे नियम का अध्ययन नहीं अपितु उस नियम के अनुसार समाज को विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। पश्चिम के समाज ने जहाँ से पहले पहले इसके इसे पकड़ा है वहाँ इसका संकुचित आर्थिक अभिप्राय ही लिया है और इसे हाथ में लेकर समाज का विकास करने के स्थान में देर तक इस सिद्धांत का अध्ययन भर किया है। और यदि अब धीरे धीरे मनुष्य के संपूर्ण विकास को श्रम विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है और इस सिद्धांत को आधार बनाकर समाज की रचना की जा रही है, होने ही नहीं दी जा रही है, तो समझ लेना चाहिए कि पश्चिम इतनी देर के बाद अब भारत के वर्ण व्यवस्था के आदर्श को छूने की तैयारी भर कर रहा है। अगर श्रम विभाग के विस्तृत अर्थ माने तो दोनों सिद्धांतों के परिणाम भी लगभग एक से निकलते हैं। श्रम विभाग के सिद्धांत से भी समाज के वर्ण व्यवस्था की तरह के ही चार विभाग हो जाते हैं। इस समय यूरोप में भी क्लर्जी, सोल्जर, मर्चेंट तथा लेबरर ये चार विभाग ही हैं और सर्वदा सर्वत्र तथा देश काल में मनुष्य समाज के यही चार भेद स्वाभाविकतया हो सकता है। नाम भले ही कुछ हो, ये तो उन प्रवृत्तियों के विभाग हैं जो सब जगह एक सी है। श्रम विभाग के इन स्वाभाविक भेदों को वर्ण व्यवस्था ने सिर्फ नियमित कर दिया है और इस विभाग के अपने आप हो जाने में इसके सिर्फ आर्थिक बन जाने की जो प्रवृत्ति है उसे हटा दिया है।